तो एक पूरा प्लानर आएगा। यानी इवन मैं ये महसूस करती हूँ, अगर आप डिमांड कर दें तो हम हदीस स्पेशलाइजेशन जो है आपको खुसूसी कोर्स भी ऑफर कर देंगे। देखिए ऐसे नहीं, ये डिमांड नहीं होती, रिटर्न रिटर्न दें, और रिटर्न पर आप उसके लिए जो है अपने कैंपस कोऑर्डिनेटर से बात करें, रिटर्न साइन करके दें कि हम इतने लोग हैं जो हम आइंदा हदीस पढ़ना चाहते हैं या सीरत आइंदा और पढ़ना चाहते हैं या फिक पढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम उसको उसी के लिहाज से एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह, उन लोगों के लिए एडजस्ट करेंगे, फिर रिजल्ट्स के मुताबिक भी देखेंगे। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो आपकी पिछली कंप्लीशंस, एक स्टेज से निकलें तो सही, फिर हम अगली स्टेज पर लेके जाएं, ठीक है। तो लेकिन अब की बार जब हम आपको स्पेशलाइजेशन करवाएंगे किसी भी चीज में, तो वो प्रैक्टिकल वर्क दिए बगैर नहीं, प्रैक्टिकल वर्क जरूर होगा। मिसाल के तौर पर जैसे रुखसाना को हो सकता है कि आप हम कोई एडमिन की ड्यूटी मिल जाए या क्लास के अंदर कोई ड्यूटी मिल जाए, फरजाना को कोई और ड्यूटी, मतलब डिपेंड करता है ना, जैसे जैसे अल्लाह ताला ने मौका दिया हर एक की कोई ना कोई ड्यूटी होगी, और उसमें हम यानी आप यूं समझ लें कि ये काम भी और वो भी काम, दोनों काम फिर उसको इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों के लिए फिर आसानी हो जाए इंशाल्लाह। और ये कि सहज पके सो मीठा हो, फिर हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे कि किस तरह से, लेकिन आपके इस पिछले कोर्स की कंप्लीशन के बाद। ये जो आप लोगों के कोर्सेज कंप्लीट हैं तमाम, कितने लोगों के कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह 17 तक? हाथ ऊंचा खड़ा करें ना, मुझे पता नहीं चल रहा, काफी लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। कितने लोगों के कोर्सेज अभी रहते हैं, हाथ खड़ा करें। जी जी अच्छा ये बता दें कि एक 1.5 माह और मिल जाए तो कंप्लीट कर लेंगे, तो हम उसी लिहाज से फिर आगे का शुरू करेंगे। जो लोग कंप्लीट कर लेंगे उनकी हम अगली ट्रेनिंग पहले शुरू करवा देंगे, वो उस उतनी देर में अपने ट्रेनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर लें और बाकी लोग अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लें, तो इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा फिर हम के एक ही वक्त में हम उसको शुरू करवा देंगे, फिर ये लोग अपनी ट्रेनिंग और अपने बाकी मामला साथ साथ लेके चल लेंगे, जैसे भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी। कुछ लोग फर्स्ट सेमेस्टर में शिफ्ट हो जाएंगे, ये हम फिर डिसीजन करेंगे, लेकिन काइंडली कल के दिन पे डिसीजन करवा लें। आप लोगों की इंडिविजुअली मुलाकात हो जाएगी, फैसला हो जाएगा, आप भी क्लियर माइंडेडली अगले साल के बारे में, आपको पता होगा आइंदा का मेरा ये प्लान है, वाज़े प्लान, और कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही अगली चीज अगर सामने ना हो तो फिर वक्त जाया होता है, तो आपका अगला टाइम टेबल अपने बाकी चीजें, हम सारी उन चीजों पे आजकल मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प करने के लिए। अब पीछे बैठ के कितनी मेहनत करनी पड़ती है इंशाल्लाह, जब आप काम करेंगे आपको बहुत पता चलेगा इंशाल्लाह। तो अभी तो हम चाहते हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा मौका दें कि आप इस फेज से गुजर जाएं, इस फेज से गुजरेंगे इंशाल्लाह, फिर जब आप लोग साथ शामिल हो जाएंगे फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक ट्रेनिंग का मरहला होता है इंसान कभी रिलैक्स हो ही नहीं सकता। हमें दरअसल इस्लाम की खिदमत के लिए ऐसे लोग चाहिए जो लाइफ लगाएं। शादियां करने से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं, आप शादियां करें, आप अपने घर बसाएं, अपने सारे काम करें, लेकिन इस्लाम की खिदमत के लिए कमिटेड लोग चाहिए, वो कमिटेड लोग जो वाकईतन अपना वक्त लगाएंगे, कम ज्यादा जितना, ये हमें पता है कुछ अर्सा तो शादी के बाद ऐसा आता है जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, समटाइम्स लोग वो अर्सा जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, समटाइम्स लोगों के लिए मुशक्कत होती है, तो ऐसी बात नहीं है कि हम कोई वक्त नहीं देते, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सिलसिला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि अगर आप लोग साथ शामिल होंगे तो हम इस्लाम की खिदमत के लिए कितने बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके चल सकते हैं, जैसे हमारा स्कूल प्रोजेक्ट है जो हमने रोक के रखा हुआ है, जैसे हमारे अगले बहुत सारे, आप जब वर्कशॉप में शरीक हुए थे तो आपको पता है जैसे बहुत सारी चीजों में हम इस दौरान भी हम आगे निकले हैं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा हमें तकलीफ है कि आप जल्दी फारिग हो जाएं, कि आप फारिग होंगे तो हम कुछ करने के काबिल होंगे, लेकिन कमिटमेंट, कमिटमेंट आप खुद डिमांड करें, आप खुद अपने टीचर से कहें कि हमसे कमिटमेंट लें, हमें कोई कोई किसी नौयत की कमिटमेंट के लिए हमें कोई फॉर्म फिल करना है या कुछ और करना है हमसे करवाएं, लेकिन हमें फिर हमें भी हमारा माइंड भी क्लियर हो हमने क्या करना है, हम उसके मुताबिक करने के काबिल हो। तो आप में से कोई फर्द भी बगैर काम के ना बैठे, کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں طے کروا کے بیٹھے. تو یہ یعنی اس کو ریجیکشن فیل کریں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں, کوئی نہ کوئی کام لے لیں ورنہ آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی. میں نے بہت لوگوں کو زندگیاں ضائع کرتے دیکھا, اتنے ٹیلنٹڈ لوگ لیکن کچھ نہیں کر پا رہے, کچھ نہیں کر پا رہے. یہ مت سوچے گا کہ کوئی اکیلا فرد اکیلے رہتے ہوئے سارے کام کر لیتا ہے. اجتماعی زندگی سیکھیں, ایک اکیلا دو گیارہ, مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی کمیاں دور ہوتی ہیں نا. ایک انسان کے اندر جو کمی ہوتی ہے دوسروں کی وجہ سے وہ پوری ہو جاتی ہے. کسی کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے, کسی کو دوسری دی ہے, اس طرح سے اجتماعی کام ہونے ممکن ہو جاتے ہیں. اینٹ کی جو صلاحیت ہے وہ سیمنٹ میں نہیں ہے, جو سیمنٹ کی صلاحیت ہے وہ اینٹ میں نہیں ہے. اور دیکھیں لوہے کی اپنی بات ہے, چھت پہ آپ جتنا مرضی اینٹ اور سیمنٹ لگانا چاہیں لوہے کے بغیر لگا کے دیکھیں, لوہے کی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے. اسی طرح سے جیسے عام عمارت کو آپ تعمیر ہوتے دیکھتے ہیں, اسی طرح اسلام کی عمارت کی تعمیر بھی ہوتی ہے. اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی ہوتی ہیں. اور ان دنوں میں بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم زیادہ بڑے کام کرنے کی پوزیشن میں آئیں. بڑے کام سے ہی مراد نہیں ہوتی کہ جوتے اٹھانے کے لیے انسان کا دل ہی نہ چاہے, یا کھانا بنانے کو, یا باقی کام کرنے کو. بڑے کام سے مراد اللہ کے نام کی بڑائی. جتنا کسی کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی کا یقین اترتا ہے اتنا ہی اس کی اپنی ذات چھوٹی ہو جاتی ہے, پھر اسے چھوٹا سا کام بھی بہت بڑا لگتا ہے الحمدللہ. اس وجہ سے ذات کی بڑائی کے خول سے نکلا ہے. ہماری ذات بڑی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کس طرح سے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا, اور غرق ہوتے ہوئے جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی ٹھونس رہے تھے کہ کہیں اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم نہ آ جائے کہ یہ کوئی فریاد کرے اور اللہ تعالیٰ کو رحم آئے اور یہ معاف کر دیا جائے. اب نہیں اسے معافی ملنی چاہیے. تو کیا فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی نہیں کہتا تھا؟ سیکھنے کی یہی چیز ہے بیٹا. اور مومن تو تب بڑا ہوتا ہے جب وہ تواضع سیکھتا ہے, جھکنا سیکھتا ہے. وہ اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے جس وقت دوسرے مومنوں کے سامنے تواضع اختیار کر. تواضع کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ تواضع کسے کہتے ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے, لیکن عاجزی کا ہمارے یہاں بڑا مس کنسیپشنز ہیں. مومن کے کردار کی خوبصورتی ہے تواضع, کہ وہ اپنے جیسے انسانوں سے ملتا ہے تو اکڑ کر نہیں ملتا. میں ابھی اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز دے رہی ہوں. جیسے یہ تواضع کھانا پیش کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے, چلتے ہوئے بھی نظر آتی ہے, کپڑے پہنتے ہوئے بھی نظر آتی ہے, لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے, کھانا بناتے ہوئے بھی نظر آتی ہے, بزنس کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے, جب کوئی جہالت سے پیش آئے اس وقت بھی نظر آتی ہے, پڑھتے ہوئے بھی, کسی کا حکم مانتے ہوئے بھی, کسی کے مس بیہیو کرنے پر صبر کرتے ہوئے بھی. کیونکہ اس ایسے موقع پر جب مومن ضبط کرتا ہے اور اللہ کی خاطر جھگڑا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. تواضع کرنے والے کا درجہ بلند ہوتا ہے. اور جو ریئیکٹ کرتا ہے, غصہ کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے غصے کو امپوز کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ ڈیکلریشن ہے, اعلان ہے کہ یہ سب کچھ ابلیس کی جانب سے ہے. ابلیس حاوی آ جاتا ہے نا انسان پر اور وہ انسان کو ایسی کیفیت میں لے آتا ہے. اور یہ غصہ ہے, غضب کو بجھانے کے لیے جس چیز کا حکم دیا گیا, ہر ایک چیز میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ابلیس ہے, یہ ابلیس ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیاطین آگ سے بنے ہیں نا, تو آگ کو پانی بجھاتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ غصہ ہے, پانی پیتے ہیں, وضو کرتے ہیں, یہ چیزیں آپ کو سکون دیتی ہیں نا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے نا. جس وقت ایک انسان کے اندر اتنی آگ لگتی ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے غصے کا اظہار کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی انسلٹ کرتا ہے یا کسی پر اپنی ذات کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر اور زیادہ تکبر بڑھتا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ تواضع کے بارے میں جب لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے تو یہ کہ وہ دوسروں کے سامنے ذلت اختیار کرتے ہیں, نفس کا حق ختم کر دیتے ہیں, ذلت اختیار کرتے ہیں, اور انسانوں کے سامنے ذلت اختیار کرنے میں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پست کرنے میں کیا فرق ہے, یہ مائنیوٹ ڈفرنس سمجھ نہیں آتا. اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر غیرت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے, کسی نے دین کے کسی حکم پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اس کی مخالفت کی, وہاں بھی چپ کر جاتے ہیں کہ بھئی اب اس معاملے میں ہم نے جھگڑا نہیں کرنا. تو یہ یعنی آپ اگر ایک پرسنالٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا کہ تکبر کہاں ختم ہوتا ہے, تواضع کہاں سے شروع ہوتی ہے, اور تواضع خالق کے سامنے کیا ہوتی ہے, مخلوق کے سامنے تواضع کیا ہے, اور اس میں کس جگہ پر ہم سے کیا مطالبہ کیا گیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تواضع کرنے والی شخصیت تھے, تو رسول اللہ کی تواضع کو ضرور پڑھیں سیرت کی کتب سے کہ آپ کس طرح سے تواضع اختیار کرتے تھے, کس طرح آپ لوگوں کے سامنے اظہار کرتے تھے کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا کر پکاتی تھی, میں اپنی ذات کے لیے بڑا ہی نہیں چاہتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کے سامنے اظہار بھی کر دیتے تھے کہ آپ میری اس طرح سے تعظیم کیوں کرو اس انداز میں جو اللہ کا حق ہے. تو تواضع کے بارے میں جب آپ جانیں گے تو یہ پرسنالٹی کا بیلنس ہے. چار بنیادی قوتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر, جو اگر اوپر چلی جائیں تو اس کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے, نیچے چلی جائیں تو تب بھی ٹھیک نہیں, بیلنس قائم رکھنا ضروری, تب بیلنس قائم ہوتا ہے. ان میں سے ایک قوت قوت غضب ہے, اور غضب دیکھیے انسان کے اندر موجود ہے. اگر آپ اپنے آپ کو غضب کے حوالے سے آزاد چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ درندگی تک پہنچا دیتی ہے, پھر اس کی وجہ سے خاص رویے بھی پیدا ہوتے ہیں. اگر قوت غضب کے بارے میں آپ اپنے اوپر زیادتی کریں گے تو حزن پیدا ہوگا, غم, ملال, حزن. آپ کے اندر جب حزن کی کیفیت آئے گی یا ذلت کی کیفیت آئے گی, حزن کے ساتھ ہی ذلت آ جاتی تو یہ بیلنس نہیں ہے. پھر غضب کا بیلنس کیا ہے, شجاعت, بہادری. تو بہادر انسان کیا کرے گا, غصے کے موقع پہ تو غصہ کنٹرول کر لے گا, لیکن جہاں پر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوگی وہاں پر نہیں چھوڑے گا, جائز جگہ پہ غصے کا استعمال ہے اور ناجائز جگہ پر نہیں. اور کتنا فہم کی ضرورت ہے, کون سی جائز جگہ ہے کون سی ناجائز, زندگی میں پتہ ہی نہیں لگتا, یہی تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. ویسے فقہ پڑھنا چاہتے ہیں نا, تو فقہ تو ظاہری اعمال کے حوالے سے ہماری ہیلپ کرتی ہے نا, لیکن جو ہمارے روحانی معاملات ہیں, جو ہماری شخصیت کے دیگر معاملات ہیں, وہاں فقہ کسی قسم کا کام نہیں دیتی. اس کے لیے تفقہ فی الدین کی ضرورت ہے, وہ تو اور علوم ہے نا, جیسے آپ کا تزکیہ, تربیہ, اور پھر اسی طرح سے اخلاقیات کے جو بنیادی مضامین ہیں. ریلی ہماری سوسائٹی میں لوگوں نے اخلاق کو سمجھا ہی نہیں, ایون دیندار لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. میرا تو کبھی جی چاہتا ہے کہ ہم تو اخلاقیات کے میدان میں ڈپلوما کروائیں, ریلی شخصیت پر ڈپلوما کروائیں, ایک اچھی شخصیت کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری. اور ظاہر ہے قرآن اور حدیث کے فہم کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, جب لوگ یہ پڑھ لیں اس کے بعد اگلا کام شروع ہوتا ہے, پھر لوگ آگے کی چیزیں سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو قوت غضب پہلی قوت ہے, اسی طرح سے قوت عدل ہے. اب آپ دیکھیں کہ عدل کی ایک جانب اگر عدل نہ ہو تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے, ظلم. اور ظالم جو ہے وہ بڑا سنگ دل اور بے رحم ہوتا ہے نا. اور اسی طرح سے قوت عدل کا بھی ایک یعنی ایک نیچے کا پہلو ہے, ایک اوپر کا پہلو ہے. قوت عدل اگر اپنے بیلنس پر نہ ہو تو کوئی ظالم بن جاتا ہے یا پھر کوئی مظلوم بن جاتا ہے. تو ظلم سہنا یہ نیکی نہیں ہے, برائی ہے, اسلام اسے نیکی نہیں سمجھتا. اسی طرح سے کیونکہ ایسا شخص جو ہے مظلوم ہوتے ہوئے اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح سے تیسری قوت جو ہے قوت عقل ہے, عقل. تو عقل جو ہے یہ यानी इसका भी बैलेंस पॉइंट है ना। और इसमें आप देखें कि अक्ल का बुरा इस्तेमाल और अक्ल का यानी पॉजिटिव यूसेज और उसका मनफी यूसेज, कहीं डिग्री अक्ल की बढ़ गई ना और कहीं बिल्कुल नीचे चली गई। कुव्वत अक्ल की वजह से इंसान इल्म हासिल करता है और उसकी वजह से बाकी। तो ये इसी तरह से कुव्वत शहवत है, कुव्वत शहवत के अनबैलेंस्ड होने की वजह से जिनाकारी होती, जिना, फेल कौम लूत, ये सारे कुव्वत शहवत के बैलेंस्ड ना होने की वजह से। और फिर आप देखें कि कुव्वत शहवत का जो बैलेंस पॉइंट है वो क्या है, हया। अब आप देखें कि जिसने हया को सिर्फ ये समझा कि इसका मतलब शर्म है, इफ्फत और पाकदामनी जिसके जहन में ही ना आई, जिसके जहन में ही यानी बेहयाई का कॉन्सेप्ट ना आया, इसको बैलेंस पे जिसने नहीं पढ़ा कि इसका रियल बैलेंस कहां कायम होना है। आप शिकंजबीन बनाते, बैलेंस कायम करते हैं, शुगर और सॉल्ट का और लीमू का बैलेंस कायम करते हैं। तो शिकंजबीन बनानी आती है, अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, अपनी कुव्वतों को गड़बड़ कर देते हैं ना। और इसी तरह से आप देखें, ये चार कुव्वतें मैंने आपके सामने रखी, कुव्वत शहवत, कुव्वत गजब, कुव्वत अक्ल और अदल। अब आप देखें कि जो अखलाक है ना, वो हमारे यहां जैसे पढ़ाया जाता है, झूठ मत बोलो, ठीक है, सच बोलो, सच्चाई बहुत बड़ी सिफत है, लेकिन बोलने के साथ ही इसका ताल्लुक समझा जाता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक लोग सच की हकीकत को ही नहीं पाते। सूरह अल कमर के इख्तिताम पर रब्बुल इज्जत ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, सिद्क फी मकद सिद्क इंद मलीक मुक्तदर, तो मकद सिद्क क्या है, सच्चाई का मकाम, सच्चाई का सबसे बड़ा मकाम क्या है, सिद्दीक, सिद्दीकियत। तो सिद्दीक कौन होता है, इसकी हकीकत समझे बगैर आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा कैसे बना सकते हैं। अब आप देखिए कि आइंदा आने वाले दिनों में कितना ज्यादा पर्सनैलिटी का बैलेंस सीखने की जरूरत है। चार कुव्वतों का बैलेंस सीख जाएं बस, आप असली वाला दीन सीख जाएंगे। और हमारे उलमाए अखलाक ने इन चार कुव्वतों पे बात की। अजीब बात यह है कि इसके ऊपर ग्रीक फिलोसफर्स ने भी यही चार कुव्वतें हैं जिनको तस्लीम किया, कि चार कुव्वतें। इमाम गजाली ने भी नहीं चार को डिस्कस किया है। तो बेसिक कुव्वत है ना इंसान के अंदर, अल्लाह ने इंसान को दे रखी है। तो आपने बस इस महीने में ये जरूर सोचना है, तवाजन कैसे कायम होगा, तवाजन कैसे कायम होगा, फिर आपके अंदर बात उभरेगी कि हाँ इसका इल्म हासिल करना चाहिए। तो ये हमारा जो दिल बदले तो जिंदगी बदले का कोर्स है ना, ये इसी पे बेस्ड है, इन चार कुव्वतों के तवाजन पर पूरा कोर्स, पार्ट वन और पार्ट टू अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये बैलेंस करना इनिशियली हल्के लेवल पर सिखाया गया, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में प्रैक्टिकली। इवन देन मैं समझती हूं कि आगे इसको अगली स्टेज पर ले जाने की जरूरत है। तो मुझे ये बताइए कि आप अगर कुरान और हदीस पढ़कर, सीरत पढ़ के, बाकी मजामीन पढ़ के उसको अपनी शख्सियत के एतबार से नहीं देखेंगे, तो क्या आपकी शख्सियत एक मिसाली मोमिना की शख्सियत हो जाएगी? ये जो किताब है ना, ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये शख्सियत पर है, मिसाली मुसलमान औरत। लेकिन इसका बैलेंस अगर आप नहीं समझते, सिर्फ ये पता चल जाए आपके सामने चाय बन के आती है और आपको चाय बनाने का नहीं पता, तो आप चाय पीते, आप कहते अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी कैसे होगी ये पता ही नहीं चलेगा आपको, क्या पता कि फिर, यानी अगर किसी को चाय बनानी नहीं आती। मेरा दिल चाहता है वैसे चाय आपसे बनवा के देखूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अक्सर लोगों को चाय बनानी नहीं आती। एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने अपनी किसी स्टूडेंट से कहा कि दो कप पानी बॉयल करके लेके आओ। कैन यू इमेजिन कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैन में मग पानी समेत डाल दिए और मग उबाल के लिया है कि आपने कहा था दो कप पानी ले आए। अब आप मुझे ये बताइए कि कुव्वत अकल का बैलेंस कहां है, नजर आता है? अच्छा ऐसी ये वाली चीज तो आप सारों को पता होगी कि ये वाला बात नहीं होनी थी, लेकिन आप लोग जिंदगी में जो रवैये बरत रहे हैं ना इस वक्त पे, रियली ये इससे कम नहीं है, बस सिर्फ ये कि उनकी समझ नहीं है। और बाद में ऐसा हुआ कि वो जिस बच्ची ने मग उबाल कर दिए थे ना, तो अपनी जिंदगी के बारे में एक भी डिसीजन आज तक ठीक नहीं कर पाई, सिंगल डिसीजन, क्योंकि उनके दिल में ये था कि मुझे सब पता है। अल्फाज के एतबार से देखें, टेस्ट ले लें सारे ठीक होंगे, जिंदगी बिल्कुल मिजरेबल है। अच्छा मैंने एक बच्ची से कहा कि आप चाय बना के लें लेकिन सेपरेट बना के लाएंगी। उन्होंने कहा हॉस्टल में तो आपको पता है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने को बहुत मौका मिल जाता है। उन्होंने यूं किया कि यानी मिक्स चाय बना के ले आई। मैंने कहा ये तो मिक्स चाय है भाई, वो कहवा किधर है जो आपने दूध में डालना था। तो उन्होंने कहा कि देखें मैं तो सेपरेट बना के लाई हूं, तो आप यानी मुझे साबित ही कर रही थी कि आपको क्या पता कि सेपरेट चाय क्या होती। मैंने कहा अच्छा भाई ये बताओ कि मिक्स चाय कैसे बनाते। कहते मिक्स चाय तो हम ऐसे बनाते हैं कि पानी और दूध ऊपर रख देते हैं इकट्ठा, ये मिक्स है, फिर हम उसमें पत्ती डाल देते हैं और उसमें चीनी भी डाल देते हैं, ये मिक्स चाय है। मैंने कहा अच्छा तो सेपरेट कौन सी होती। कहते उसमें हम यूं करते हैं कि पहले पानी बॉयल करते हैं फिर उसमें दूध डालते हैं। मैंने कहा पत्ती पहले डालते हो। कहते नहीं पत्ती नहीं पहले डालते, फिर हम उसमें दूध डालते हैं, जब फिर वो दोनों उबल जाते हैं तो फिर हम उसमें पत्ती डाल देते हैं, ये मिक्स चाय है। तो ये मैंने बातें नाम लिए बगैर इस वजह से सामने रखी कि अभी तो आपको हैरत हो रही है, लेकिन आप लोगों में से ये मुझे पता है कि अक्सर लोगों का अगर मैं भेजूं कि जाएं अच्छी चाय बना के लाएं, तो अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट चाय बनाने का भी क्लियर नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई लेट डाउन करना चाह रही हूं, नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि एक चाय के कप से आप अपनी जिंदगी की लाइफ की क्वालिटी को परखना चाहें कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना समझते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता नहीं। इससे आपको यह पता चलेगा कि बैलेंस कायम करने के लिए किस चीज की जरूरत है। आप अपने आम रवैयों से देखेंगे ना कि अगर आम लाइफ में आप बैलेंस कायम नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी रूहानी अकली फिक्री और आपकी जाहिर आपकी फिजिकल लाइफ भी है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी है और आपकी फिक्री लाइफ भी है, अकली जिंदगी भी है, इसका बैलेंस कैसे कायम होगा। फिर इसका बैलेंस कैसे कायम होगा, लर्न प्रैक्टिस एंड स्प्रेड इस्लाम, बैलेंस हर जगह चाहिए। तो इंशाल्लाह आप अपने बारे में अगर ये अपने आप को ये समझाते रहें कि हम सीखने के लिए आए, और सीखना है इंशाल्लाह सीखना, और हमें सारी जिंदगी सीखने की जरूरत, आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आप उसके लिए कोशिश भी करें। जब आप ये समझ लेते हैं ना कि हमने सीख लिया, बस समझ ले कि इबलीसियत आ गई, वो पहला दिन होगा जहां आप खराब हो जाएंगे। लाइफ की कोई स्टेज ऐसी नहीं जहां आप कह सकें हाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अल्लाह के इल्म को देखिए, अल्लाह ने अपने अंबिया को जो इल्म दिया वो देखिए, रसूलुल्लाह का फहम कितना था, सहाबे करम का फहम कितना था, और उसके मुकाबले में अपना फहम देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। तो आप कोई तो आइडियल बनाए ना, आइडियल कौन है आपका। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, जब आप कहते हैं फिर करते क्यों नहीं, फिर आपको जिंदगी में हसरत भी नहीं होती, उसकी रीजन है। देखें ये एक किताब है, इस किताब के अंदर कुछ प्रिंट हुआ है, आपको चाहिए तो ये अल्फाज, लेकिन ये कागज के ऊपर है, ये कागज आपस में किसी चीज से जोड़े गए, फिर भी काफी नहीं था, फिर इस जोड़े हुए कागज को किस तरह से इस बाइंडिंग के साथ जोड़ा गया। बाइंडिंग भी सिंपल नहीं है, बाइंडिंग के ऊपर किस तरह ये यानी ये कवर चढ़ाया गया, उसके ऊपर ये सब कुछ करके फिर इसको सिंपल फिर भी नहीं छोड़ा गया। इनमें से समटाइम्स कुछ चीजें मैट होती है, कुछ के ऊपर फिर एक और कवर चढ़ता है। जैसे फर्ज करें कि ये पारा है, फर्ज करें तो इसको इसके अंदर जो कुछ है ये इसको मशीन के जरिए से जिस तरह से भी इसको गम बाइंडिंग की गई या इसकी स्टिचिंग हुई या जो भी सिलसिला हुआ, फिर इसको साथ में इसका अलग ये अलग प्रिंट हुआ, इसको अलग से इसके साथ जोड़ने के लिए, फिर इकट्ठे जोड़ने के लिए किया गया, फिर कटिंग हुई, फिर इस प्रोसेस के बाद एक चीज आपके सामने आई, तो इन सारी चीजों को आपस में जुड़े हुए होने की जरूरत है। अगर आप ये कहें कि मुझे तो अल्फाज चाहिए, मेरी बला से ये जितना मर्जी गंदा हो जाए, खराब हो जाए या फट जाए या इसके कुछ चीजें जाया हो जाए, ठीक है मैंने पढ़ लिया और बस काम खत्म, मेरे पास वो इल्म आ गया, तो काफी नहीं है। तो जैसे इल्म को महफूज रखा जाता है, अल्लाह ताला ने किताब तो नाजिल कर दी थी फरिश्ते के तवस्सुत से, फिर ऐसा क्यों हुआ कि उसे दो गत्तों के दरमियान महफूज भी करवाया, लिखवाया, महफूज करवाया। आज कुरान हकीम की प्रिंटिंग के हवाले से आप देखें, इतनी प्यारी चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। मैं क्लिप दूंगी, आप देखिएगा आज कि किस तरह से कुरान की प्रिंटिंग होती है। कुरानी इल्म है ना, फिर उसको कागज पे लाना, फिर उसका उसके लिए पीछे कितनी मेहनत होती, फिर वो एक बाइंडिंग में जब आपके पास आ जाता है तो फिर आप नाशुक्रापन इख्तियार करते हैं। इसलिए पीछे का पता ही नहीं कि पीछे क्या हुआ, लेकिन आपकी लाइफ में देखें, मिसाली मुसलमान औरत है ना, ये किताब है, हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप हो जाएं, तो ये किताब के अल्फाज पढ़ के हो जाएंगे, ये तो अल्फाज ही रह जाएंगे, फिर आप इसका टेस्ट भी दे देंगे, फिर किताब एक तरफ चलेगी, आपकी जिंदगी एक तरफ चलेगी। जिंदगी बेटा सीखने से आती है। और आप देखें कि मैंने जो बात कही, लिंक जोड़ना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अपने साथ लिंक जोड़ने के लिए अगरचे अल्फाज नाजिल कर दिए थे, अगरचे लोगों ने अपने सीनों में महफूज कर लिए थे, लेकिन किताब एक लिंक बन गई। अब किताब को हम हाथ में लेते हैं, अपने मोबाइल में रखते हैं, अपने लैपटॉप में या अपने आईपैड में, किसी भी चीज में रखते हैं, नोटपैड में, जिसमें भी रखना चाहें, तो आप उन तमाम वास्तों से उससे फायदा उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है अब वो हमारा तब बनता है जब वो हमारे पास होता है। उसको पीछे किसी ने, जिस किसी ने कोई वास्ता बना है प्रिंट करने का, कोई वास्ता बना है उसके ऑडियो या उसकी मैनुस्क्रिप्ट को सॉफ्ट कॉपी में महफूज रखने का, तब कहीं जाके उस कलाम से आप फायदा उठाने के काबिल हो, फिर वो कलाम आपको अपने रब से जोड़ता है। इसी तरह से इंसानी जिंदगी में असातिजा जो है ये वास्ता बनते हैं, ये वास्ता बनते हैं रसूलुल्लाह सल्लम से ताल्लुक का, अल्लाह ताला से ताल्लुक का। तो इंसान जब जिंदगी सीखता है तो अपने साथ साथ से सीखता है, वो लिंक टूटा हुआ है, वो लिंक नहीं है जिसकी वजह से फिर सीखना उस तरह से मुमकिन नहीं। आप करीब रहते हैं अपने जैसों के, या अपनी माओं के करीब रहते हैं, या अपने घर वालों के करीब रहते हैं, उनसे कुछ और चीजें सीखते रहते हैं, अपने दोस्त अहबाब के हल्के में कुछ और चीजें सीखते रहते हैं, यहां आते हैं तो वो सारी फिर कुछ और पढ़ते हैं, फिर आप कहते हैं ये क्या है और वो क्या है, फिर जिंदगी उधर रह जाती, फिर आप कहते हैं चलो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे लो, ये कम अज कम ये तो सीख लें, फिर जब लाइफ में जाते हैं फिर वही करने लग जाते हैं। ऐसा है, जो लोग घरों में जाते होंगे वो ज्यादा एक्सपीरियंस करते होंगे, ऐसा होता ना। तो बेटा इजहार करने के मौके भी चाहिए अपनी जिंदगी को। आप अगर देखें मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, डायग्नोज करें, जब कोई और डायग्नोज करता है उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको बताया कि आपके लिए ये वाली बात इस्लाह वाली बात, फिर उसके लिए तरीके पूछें, जिंदगी में पूछते रहें, फिर असली वाली बात जब आप पर खुल जाए तो फिर उस पर कायम हो जाए। आप लोगों में से कौन कब किस वक्त पे जब उसे बताया गया कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है इसको दूर कर लें, कब वो दोबारा पूछने आया कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, पूछते ही नहीं। ऐसा लगता है सब पाक साफ पैदा हुए थे और जिंदगी में कोई तब्दीली लाने की जरूरत ही नहीं, और इसी तरह से अल्लाह ताला के पास चले जाना। तो बेटा अल-इल्म बित-तअल्लुम, इल्म सीखने से आता, और इस्लाम अल्फाज को, महज अल्फाज को इल्म करार नहीं देता। इल्म और अमल दोनों एक ही हकीकत के पहलू हैं इस्लामी नुक्ता नजर से। जब आप सीखेंगे तो अमल करना भी सीखना है इंशाल्लाह, ठीक। तो हम शख्सियत के हवाले से पढ़ेंगे मिसाली मुसलमान औरत।